أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں 10 بدعا ہیں کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، ہم سب کو سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے. بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، اس پرزے کو خدا سید کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، اور بروز محشر سید کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے. قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. حسب سابق گزارش ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو. پھر درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک صلوات پر پڑھ لیں محمد و
آل محمد.
اذان محترم، کل آپ کی خدمت میں مفہوم تقویٰ کے بارے میں چند گزارشات عرض کی. تقویٰ کا جو معنی پرہیزگاری کیا جاتا ہے، یہ عربی سے جو ترجمہ کیا گیا، معنی کیا گیا، پرہیزگاری کی وجہ سے تقویٰ کا دائرہ محدود ہو گیا، جبکہ عربی زبان میں تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں، بچنا، محفوظ رکھنا، دیکھ بھال کرنا، کسی چیز کو بچانا۔ اگر تقویٰ کو بچنے کے عنوان سے دیکھیں تب ہی اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ایک متقی انسان، ایک باتقویٰ انسان، اس کی پوری زندگی میں اس کو اس تقویٰ، وہ تقویٰ اس کو اسے فائدہ دیتا ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں متقی انسان نہ اپنا نقصان کرتا ہے نہ دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ اچھا، اپنا نقصان بھی نہیں کرتا، دوسرے کا بھی نہیں کرتا۔ عموماً تقویٰ کہتے ہیں تو فوراً ذہن عبادات کی طرف، ذکر کی طرف، اس طرف نکل پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کل عرض کیا تھا، اگر کسی لفظ کا معنی درست نہ ہو اور اس کا درست معنی ذہن میں نہ بیٹھے تو جتنے جملے ہم بنائیں گے اس لفظ کے معنی کے حساب سے، اور پھر جتنی آئیڈیالوجی بیٹھی ہوئی ہے، جتنا ہم نے اس کے شعوری، اس کے بارے میں جو چیزیں سوچی ہیں، یا جو عرض کیا تھا کہ ہم نے بنیاد رکھی ہے اس کے اوپر ساری عمارت کھڑی کر دی ہے، ہمارے فکر کی عمارت پوری کھڑی ہو گئی، اور تقویٰ کا مفہوم ہم نے پرہیزگاری لیا ہے۔ شیخ نوتیری کہتے ہیں کہ پرہیزگاری کا جو لفظ ہے، یعنی تقویٰ، عربی زبان میں تقویٰ، اس کا ترجمہ فارسی میں پرہیزگاری یا اردو میں پرہیزگاری کسی بھی لغت میں موجود نہیں ہے۔ کسی بھی ڈکشنری میں ایسا لفظ، جو عربی ڈکشنری ہے جس میں خود تقویٰ کا مطلب عرب بتاتے ہیں، جو عرب نے بتایا وہ ہے حفاظت کرنا، بچانا۔ تو بس اگر اس مفہوم کے ساتھ سمجھیں، قرآن مجید نے جو تقویٰ پر تاکید کی ہے، بہت زیادہ قرآن میں جو الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے تقویٰ ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا میر نے جو الفاظ زیادہ استعمال کیے ہیں ان میں سے ایک تقویٰ ہے۔ ایک خطبہ ہے امیر المومنین کا جس میں متقین کی صفات بیان کی ہیں، انشاءاللہ آگے اس پر بات بھی ہوگی۔ ایک صحابی تھے امام کے، حمام بن شرے، بہت متقی پرہیزگار انسان تھا، خود بھی نیک تھا، باشعور بھی تھا اور عبادت گزار بھی تھا۔ اس نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا متقین کی صفات بتائیے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اے حمام، واجبات کو ادا کرو اور محرمات سے پرہیز کرو تو تم انشاءاللہ فلاح پا جاؤ گے۔ اس نے اصرار کیا، بندہ جانتا تھا ظاہر، اس نے کہا مولا چاہتا ہوں کہ آپ متقین کی صفات ایسے بیان کر دیں کہ میرے آنکھوں کے سامنے متقی کی تصویر بن جائے، مجھے سمجھ آئے اچھا یہ متقی ہوتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ مولا پس و پیش کر رہے تھے، بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن حمام اصرار کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے واسطے دینے اور منتیں کی مولا کی۔ تب مولا نے کہا اب تم نے پوچھا ہے تو سنو۔ اس کے بعد مولا نے متقین کی صفات بیان کی، 100 سے زیادہ ہیں جو اس ایک خطبے کے اندر موجود ہیں۔ اور جب مولا بیان کرتے جاتے تھے، اور کہ اس میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حمام جو مولا کا صحابی تھا، اس کے اندر ایک طوفان برپا ہو رہا تھا سن کے کہ اچھا متقی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب مولا نے بات تمام کر لی تو حمام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مولا نے بات تمام کی، حمام بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب لوگوں نے قریب جا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ پاکیزہ روح جو ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا، تحمل نہیں کر پاتا۔ یعنی جب انسان محاسبے میں جب آتا ہے، جب وہ صفات اس نے سنی اور اس کے ذہن میں واقعی تصویر جب کھنچ گئی تو وہ تحمل نہیں کر پایا۔ اور مولا نے جو پس و پیش کی تھی شروع میں، تو وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ مولا اس کو کسی طرح ٹالنا چاہ رہے تھے، لیکن جب اس کا اصرار ہوا اور مولا نے بیان کر دیا تو حمام اس کو تحمل نہیں کر سکا۔ تو جو صفات مولا نے بیان کی وہ بھی اسی طرح ہیں، اس میں فکری باتیں بھی ہیں کہ جن کا تعلق ذہنی سطح کے ساتھ ہے، پھر اس میں وہ باتیں بھی ہیں کہ جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ پھر اس میں جو صفات مولا نے بیان کی ہیں اس کا تعلق انسان کے کام کے ساتھ بھی ہے. لہٰذا اگر میں اور آپ تقویٰ کا مفہوم سمجھ لیں تو متقی انسان کبھی بھی نہ اپنا نقصان کرتا ہے، نہ لوگوں کا نقصان کرتا ہے، نہ معاشرے کا نقصان کرتا ہے. کوئی بھی کام شروع کرے گا، تقویٰ کیا ہے؟ بچنا. تقویٰ کیا ہے؟ محفوظ رکھنا. کاروبار شروع کر رہا ہے، اندھا دھند نہیں شروع کرے گا، پہلے سے وہ تمام کام انجام دے گا کہ جس کے ذریعے سے خود کو نقصان سے محفوظ رکھنا. انسانی کوشش پوری کر کے جتنا منصوبہ بنتا ہے، جتنی محنت بنتی ہے وہ کر کے پھر اس کے اوپر عمل کرے گا. یقیناً جو خدا کا وعدہ ہے کہ متقین ہی کامیاب ہوں گے، متقین کے لیے ہی کامیابی ہے. اور عاقبت والعاقبت للمتقین، بہترین انجام، کامیابی کا انجام، ایسا انجام کہ جس میں جا کر بندہ کامیابی پر ہی اس کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، وہ متقین کے لیے. اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید کی بے شمار آیات. بس ان مجالس میں جس طرح آپ کی توجہ جس طرف مبذول کرانی ہے، تقوی اختیار کریں، کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی چاہتے ہیں، تقوی اختیار کریں. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار میں جب جائیں تو تسبیح ساتھ لے کر جائیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کسی دکان پر جائیں، مارکیٹ میں آپ دکان پر جائیں، بھائی صاحب دکان پر بیٹھے اور ان کے ہاتھ میں وہ تسبیح ہے یا وہ بٹن والی تسبیح ہے، اچھا اسے دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بڑا متقی انسان ہے، قبول ہے. لیکن وہ جو تقوی ہے، تسبیح والا تقوی، وہ عبادت کا تقوی ہے، وہ مصلی والا تقوی ہے. مارکیٹ میں متقی ہے یا نہیں یہ اس کے بیہیویئر سے پتہ چلے گا، یہ اس کے کاروبار کرنے کے انداز سے پتہ چلے گا، یہ اس کے کاروباری ڈیلنگ سے پتہ چلے گا. اگر ہمیں اس کے کاروباری انداز میں بھی تقوی نظر آئے گا تب ہم کہیں گے کہ یہ مارکیٹ میں بھی متقی ہے. وإلا درود پڑھیں محمد علیہ
وسلم.
کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ ممکن ہے کہ ایک انسان نماز کے وقت میں متقی ہو لیکن مسجد میں متقی ہو، لیکن یہی انسان ممکن ہے گھر میں متقی نہ ہو. عموماً لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کی بات سن کے. وجہ وہی ہے، وجہ معنی وہی ہے، پرہیزگاری. نا پرہیزگاری نہیں ہے، بچنا، حفاظت کرنا، محفوظ رکھنا، خود کو، اپنے نفس کو محفوظ رکھنا، اپنی عقل کو محفوظ رکھنا نفس کے حملوں سے، کیونکہ نفس تو حملے کرتا ہے، ہدف سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ہدف سے ہٹا دیتا ہے. نماز پڑھ کے مسجد میں نماز پڑھی، حضور خشوع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھی، اور حضور قلبی بھی پیدا کرنے کی کوشش کی. عبادت کا تقویٰ جو ہے، عبادت کے وقت میں تقویٰ انجام دیا، یعنی کیا کیا؟ حفاظت کی، اپنی نماز کو بچا لیا، توہمات سے، خیالات سے بچا کر عبادت میں تقویٰ انجام دیا. گھر آئے، رات کا ٹائم، مثال دے رہا ہوں، گھر آئے، خاتون خانہ نے غلطی سے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا، غلطی سے ہو گیا، اور دسترخوان پر جو یہ پہلا نوالہ لے لیا تو غصہ آ گیا صاحب کو، اور غصہ آنے کے بعد اس غصے کا اظہار کر دیا، لڑائی کر لی، جھگڑا کر لیا، تو یہاں پر اپنی حفاظت نہیں کر سکا، یہاں پر متقی نہیں بن سکا، یہاں پر تقویٰ نے فائدہ نہیں دیا، یہاں پر تقویٰ کا استعمال نہیں کیا. تقویٰ زرہ ہے کہ جس کو پہن کر انسان دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا ہے خود کو. پرہیزگاری اور تقویٰ میں فرق کیا ہے؟ جس کو میں اور پرہیزگاری کہتے ہیں، اس میں اور تقویٰ میں فرق کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ ہمارے استاد نے آگے سب ضرور نے بڑا خوبصورت فرق بتایا. کہتے ہیں اگر نامحرم سامنے آ جائے، نامحرم خاتون سامنے آ جائے، گزر رہی ہے، انسان نظریں جھکا لے، نامحرم خاتون آ رہی ہے، گزر رہی ہے، انسان نظریں جھکا لے، آغا کہتے ہیں کہ یہ پرہیزگاری ہے، کہ اسے پتہ چلا نامحرم آ رہی ہے اور اس نے نظریں جھکا لی، یہ پرہیزگاری ہے. تقویٰ کیا ہے؟ نامحرم آئی ہے اور چلی بھی گئی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی آ کے گزرا ہے.
یہ تقویٰ ہے. وہی وہ جو عبادت گزار تھا غیر متقی کی عبادت ہے نا, عبادت میں کھڑا تھا. یہ مجنوع کا جو قصہ ہوتا ہے, لیلا اور مجنوع کا قصہ, شیخ مطہری نے اس کو نقل کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ واقعی کوئی ایک مجنوع کوئی مرد تھا اور لیلا کوئی خاتون تھی اور عشق کی داستان تھی. عرب میں, عربی لٹریچر کے اندر عشق مجازی کی مثال دینے کے لیے لیلا اور مجنوع کا کردار فرض کیا گیا ہے, اور ان کے آپس کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ فرضی ہوتے ہیں. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور مجنوع اس کے سامنے سے گزرا, جو ہی گزرا اس نے آواز دی, کہا وہ نالائق, یہ کیا کر دیا پاگل. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہے تھے میں عبادت کر رہا تھا اور تم سامنے سے گزرے میری عبادت خراب کر رہے. اس نے کہا معذرت, میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے گزرنے سے عبادت خراب ہو گئی. پھر مجنوع نے سوال کیا اس سے تم عبادت میں کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے کہا خدا سے بات کر رہا تھا. تم عبادت میں کس سے بات کر؟ اس نے کہا خدا سے بات کر رہا تھا. مجنوع نے کہا جب تم اللہ سے ملاقات کر رہے تھے, جب تم اللہ سے بات کر رہے تھے, تم اللہ کی محبت میں اللہ کے عشق میں جب خدا سے بات کر رہے ہو تو تم کیسے عاشق ہو کہ میں سامنے سے گزرا ہوں تمہیں پتہ چل گیا ہے, جبکہ میں لیلا کے عشق میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میں تمہارے سامنے سے گزرا ہوں. مجھے تو یہ نہیں پتہ کہ میں تمہارے سامنے سے گزرا ہوں, میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا. یاد رکھیں تقویٰ زرا ہے. انسان اپنے اندر وہ ایبلٹی پیدا کرتا ہے کہ گناہ سے دور رہے, طاقت پیدا کرتا ہے. کیا ہے تقویٰ؟ تقویٰ کیا ہے؟ طاقت پیدا کرنا. ایک ہوتا ہے کہ چھوڑ کے چھپ جانا, کل جس طرح عرض کیا تھا روحانیت اختیار کر لیں. عیسائیوں میں وہ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں, شادی بھی نہیں کرتے ہیں, نفس کو مارتے ہیں, نفس کو پابند کرتے ہیں. یا ہندوؤں کے اندر جو سادھو بنتے ہیں وہ بھی ترک دنیا ہے. اسلام نے جس تقویٰ کی طرف دعوت دی ہے وہ ترک دنیا نہیں ہے. جہاں بھی جاؤ تم متقی ہو, جہاں بھی رہو گے تقویٰ کے ساتھ ہیں. صرف بعض اوقات مراحل کا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایبلٹی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, انسان کو بالکل آخری مرحلے سے بھی نکال کے لے آتا ہے. جوانی ہے, عین جوانی, 20 سال کی عمر, 20 کے آس پاس کی عمر ہے, بہترین جوانی کی عمر ہوتی ہے. عروج ہوتا ہے جوانی کا, کہ جس وقت انسان جوانی کے عروج پر ہوتا ہے, نوجوانی کا آغاز جوانی کا آغاز ہے. بہت پریشر میں ہوتے ہیں جوان, عین جوانی ہے. اور مصر کی سب سے حسین ترین عورت ہے, اور رات کا وقت ہے, بلایا ہے اپنے کمرے میں, 7 دروازوں کو مصری لاک لگا دیا ہے. آج کل تو چائنا والا تالا آ گیا نا, تھوڑا سا ہلا بھی دیں تو ٹوٹ جاتے ہیں. وہ مصری لاک تھا, ابھی بھی بعض اوقات وہ دکھاتے ہیں کبھی ویڈیوز وغیرہ میں, بڑا وہ سخت ہوتا ہے, آسانی سے کھلنے والا نہیں. 7 دروازے اور مصری تالا لگا دیا. آیت کل والی یاد ہوگی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دکھا دیتا. 7 دروازے لاک کر کے اندر. اب زلیخا نے کہا میں نے خود کو آمادہ کیا تمہارے لیے. یوسف نے کہا بھی جوان ہے لیکن کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں اپنے رب سے گھبراتا ہوں, میں سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی اپنے اب آپ کو یہاں تقویٰ ایکٹیویٹ ہو گیا. کہتا بالکل نہیں, جب اس نے دعوت دی اور اس نے کہا کہ تم مجبور ہو کہ میری اطاعت کرو گے, اللہ نے کہا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے. 7 دروازے لاک ہیں اور چابی زلیخا کے پاس ہے. اب یوسف نے حکم ہوا یوسف کو کہ اس لاک کی طرف دیکھو, تالے کی طرف غور سے دیکھو. یوسف نے جب پہلے دروازے کے تالے کی طرف غور سے دیکھا وہ تالا کھل گیا, وہاں سے بھاگنا شروع کیا. جوانی کا, عین جوانی کی ہے عمر, اور دعوت گناہ ہے, لیکن چونکہ متقی ہے اندر سے وہ پاور موجود ہے, گناہ سے بچنے کی وہ پاور موجود ہے, نکلے وہاں سے بھاگ کر. پہلا دروازہ کھلا, دوسرا کھلا, تیسرا کھلا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, सातवें पे आके वहाँ पर जब वो दरवाज़ा खोल रहे थे तो बाहर उसका शौहर जुलेखा का शौहर भी आ गया। जब इस मरहले पर पहुँचे अब उसने देखा तो यहाँ जुलेखा ने पीछे से दामन भी फाड़ दिया था जनाब यूसुफ का। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो तकवा इख्तियार करेगा खुदा उसके लिए निकलने का रास्ता दिखा देगा। अब उसने देखा वो समझ नहीं पा रहा तो फौरन वहाँ उसकी बीवी ने कहा, कुरान ने इसी जुमले को इसी तरह नकल किया है, उसके साथ क्या करोगे कि जो तुम्हारे नामूस के ऊपर बुरी नज़र डालता है। अब वो मशकूक हो गया कि मसला क्या है। उसने जनाब यूसुफ से कहा कि तुम अपनी पाकिजगी में अपने बारे में गवाही दो, कोई गवाह पेश करो जो गवाही दे कि तुम पाक हो। यूसुफ ने कहा खुदा के अलावा मेरा कोई गवाह नहीं। जबकि जुलेखा ने अपनी दाई को पेश कर दिया और उसने जुलेखा के हक में गवाही भी दे दी कि यूसुफ ज़बरदस्ती इसके कमरे में गया है, हंस गया। अल्लाह का वादा क्या है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। अब जुलेखा के शोहर ने यूसुफ से कहा अगर तुम्हारे पास गवाह नहीं है तो फिर मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा यहाँ पर कि तुमने मेरे नामोस के ऊपर बुरी नीयत से तुम दाखिल हो उसके हजरे में। अब यहाँ वही अल्लाह ने कहा मैं निकलने का रास्ता दे दूंगा। एक छोटा बच्चा गोद का साल का बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता और जुलेखा की जुलेखा का रिश्तेदार है, उसकी कोई बहन थी उसका बेटा है, उसके रोने की आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह ने यूसुफ को वही की ये जो बच्चा रो रहा है जो अभी बोल भी नहीं सकता, ए यूसुफ तूने मेरे हुक्म के ऊपर मेरी हद न तोड़ते हुए तूने मेरा तकवा इख्तियार करके जहाँ से तुम बच के निकले हो तो अब मैं उससे तेरी गवाही दिलवाऊंगा जो बात भी नहीं कर सकता, जो बोल भी नहीं सकता, जो लफ्ज़ अदा भी नहीं कर सकता। जो ये होगा कहा इस बच्चे को बुला दे, कहा मेरे पास गवाह है। कौन गवाह है? कहा ये बच्चा जो रो रहा है। तो सब ये कह रहे थे कि शायद इसका नौज़ुबिल्लाह दिमाग ख़राब हो गया, तो वो बच्चा की जो भी बात भी नहीं कर सकता। उसको लेके आए, यूसुफ ने उस बच्चे से कहा कि जो मेरे खुदा ने कहा है तो तुम्हें जो हुक्म मेरे रब ने दिया है तो मेरी गवाही दो। अब तवज्जो करें, उस बच्चे ने जो लफ्ज़ जुमला कहा है उस जुमले को भी कुरान ने नकल किया है। उसने ये नहीं कहा कि यूसुफ बेगुनाह है और जुलेखा गुनहगार है। उसने जो बात की उसने कहा अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा है तो यूसुफ गुनहगार है और जुलेखा बेगुनाह है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो यूसुफ बेगुनाह है और जुलेखा गुनहगार है। जब ये कहा तो जुलेखा के शोहर ने देखा तो कुर्ता उनका पीछे से फटा हुआ था। ये देखते ही उसके शोहर ने फौरन कहा यकीनन ये तुम औरतों का मकर है, ये तेरी मनसूबा बंदी थी, ये तू तेरा ही काम था। बस ऐसा मोहतरम हुब अहले बैत जो आपके रगों में है उसके तस्कीन के लिए जुमला अर्ज कर देता हूँ। ये है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तकवा और ये मरहला कि दावत गुनाह देने वाली औरत से अपना दामन बचाया और ख़ुद को पाक रखा और सात दरवाज़ों से भागकर अपने आप को उस गुनाह से दूर रखा। ये मरहला है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब मैं आपको मरहला बताऊं जहरा के बेटे का, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कैद में है। हारून ने कैद किया हुआ है और फिर कोशिशें करते हैं कि किसी तरह इमाम को ऐसा कोई काम करें कि जिसकी वजह से इमाम की शख्सियत को माशरे में ख़राब करें। हुक्म दिया हारून ने किसी खूबसूरत कनीज को इमाम के जिंदान में भेज दो ताकि वो अपनी तरफ उनको मुतवज्जे करें। कनीज को भेजा गया, कुछ देर काफ़ी देर बाद जब उन्होंने जाकर देखा तो हालत क्या थी, कनीज सजदे में रोए जा रही थी, गिरिया कर रही थी, सजदे में सर रख के रो रही है, फरियादें कर रही है। उसे बाहर लेके आए और कहा क्या हो गया, तुम्हें किस काम के लिए भेजा? कहते मैं जब दाखिल हुई तो वो सजदे में थे, मैं इंतज़ार करती रही कि वो सजदे से कब सर उठाएं। एक वक्त गुजर गया लेकिन उन्होंने सजदे से सर नहीं उठाया तो अचानक देखा तो मेरी नज़रों के सामने से पर्दे हट गए और मुझे जन्नत का मंजर नज़र आया जहाँ हूरें इंतज़ार में खड़ी थी और उन्होंने मुझसे कहा ए बदबख्त हम मूसा काजिम के लिए तैयार हैं कि वो एक दफ़ा नज़र उठाकर हमारी तरफ़ देख लें। वो हमारी तरफ नज़र उठाकर कभी देख नहीं रहे, वो इबादत खुदा में इतने मसरूफ़ हैं। तो तुमने कैसे समझ लिया कि तुम उनकी तरफ देखोगे या तो तुम्हारी तरफ वो देखेंगे। अज़ान मोहतरम, जुलेखा की दावत पर सात दरवाज़ों से को तोड़कर, ताले को खोलकर तोड़कर अपना दामन बचाकर निकल जाए तो उसे यूसुफ़ पैगंबर कहते हैं, और जो दावत गुनाह के लिए आने वाली औरत से सजदे करा दे उसे मूसा काज़िम कहा जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद। बस हमारे उस्ताद थे, पर चनार साइड के थे, जब हम पहले इब्तदाई तालिब इल्म थे उस वक़्त ये बसों में सफ़र करना होता था अगर शहर जाना हो तो अंदरून पंजाब वगैरह में ये बसों का सफ़र अच्छा खासा मुश्किल होता है। वो एक बस के अंदर सब लोग वो घुसे होते हैं और मर्द औरतें भी होती हैं, फिर बाज़ औक़ात बकरियाँ भी बीच में आ जाती हैं, जानवर भी आ जाते हैं। तो हमारे उस्ताद हमसे एक सवाल करते थे, कहते तुम लोग जब चिन्नियों जाते हो तो अपना तकवा साथ लेकर जाते हो या छोड़कर जाते हो? तो हमें होता था तकवा भी साथ लेके जाने और छोड़कर जाने वाली चीज़ होती है। अज़ान मोहतरम, आपसे भी यही सवाल है, वो जो नमाज़ के वक़्त में आपका तकवा साथ होता है, क्या नमाज से घर वापस आकर घर वालों के साथ जब बैठते हैं तो वो तकवा साथ ही होता है या वो मस्जिद में ही छोड़कर आते हैं? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस तकवा ज़िंदगी के हर गोशे में मौजूद है। हाँ, तकवा क्या है? एक दोस्त ने कारोबारी इस्तिलाह में जब मैंने बता समझाया तो उन्होंने एक कारोबारी इस्तिलाह इस्तेमाल की, यहाँ दोस्त मौजूद हैं उनको ज़्यादा अच्छा इसका पता होगा। तकवा क्या है? 0% लॉस। अगर आप मुत्तकी हैं तो लॉस का ख़तरा 0%, क्योंकि मुत्तकी जब काम करता है तो वो तमाम चीज़ों की प्लानिंग और तदबीर करता है, उसके बाद काम करता है। क्या वजह है कि हिज़्बुल्लाह एक तंजीम होए, एक तंजीम है, सिर्फ मुल्क नहीं है, तंजीम है। सऊदी अरब, इराक, शाम, उर्दन, मिस्र, पांच ये अरब मुल्क, ये सब मिलके 1948 में, 1965 में, 1961 में, 70 में, चार दफ़ा ये पांच मुल्क मिले आपस में, इनकी फ़ौजें मिली, मिलकर इसराइल पर हमला किए, मिलकर इसराइल पर हमला किया, लेकिन इसराइल का वाल भी वीका नहीं कर सका। चारों दफ़ा, पांचों दफ़ा शिकस्त खाई, पांच मुल्क मिलकर शिकस्त खा गए, पांच मुल्क मिलकर शिकस्त खा गए। सिर्फ तंजीम है जिसमें 10,000 अफराद हैं और उनसे इसराइल शिकस्त खा गया। इसराइल को अरब में सबसे पहले जिसने शिकस्त दी वो हिज़्बुल्लाह है। क्या हिज़्बुल्लाह के पास एटम बम है? नहीं। जंगी जहाज़ हैं? नहीं। को बहुत जदीद अप टू डेट असला है? नहीं। वही जो दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होते वही असला है। क्या है? तकवा है, मुत्तकी है। याद रखें, मुत्तकी हो तो फिर उसकी जंग भी मुत्तकियों वाली होती है, जंगी तकवा होता है। अज़ान मोहतरम, अगर जंग में तकवा ना हो तो फिर बंदा फरार कर जाता है, मुत्तकी इंसान फरार नहीं करता। आप समझ आ रही है? अली को अलम देते हुए क्यों कहा था रसूलुल्लाह ने कि मैं कल अलम उसको दूंगा कि वो ऐसा है कि वो मर्द है, वो कर्रार है, फर्रार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इमामुल मुत्तकीन है, कि जंग के मैदान में भी जाएगा तो तकवा के साथ जाएगा, जंग के मैदान में भी मुत्तकी है। अगर वो मुसल्ले इबादत में मुत्तकी है तो मैदान जंग में भी मुत्तकी है। बस इससे एक रम्ज समझ लीजिएगा। अमूमन हमें खैबर जब सुनाया जाता है तो हम खैबर को उसी 7 हिजरी के अंदर ही खैबर को देख रहे होते हैं। खैबर के अंदर रसूलुल्लाह ने एक सुन्नत दिखाई है और आज भी मुसलमान को वो सुन्नत समझ में आ गई तो यहूदियों के नकेल डाल देंगे, अगर मुसलमानों को समझ में आ गई तो। मैंने अर्ज़ किया ना, पांच अरब मुल्क मिलकर यहूदियों को शिकस्त नहीं दे सके थे, हिज़्बुल्लाह एक तंजीम ने शिकस्त दे दी। क्यों? क्योंकि सुन्नत रसूल है कि जब कभी तुम्हारा सामना यहूदियों से हो जाए तो अलम अली के हाथ में देना चाहिए, क्योंकि यहूदियों से टकराने के लिए अली इब्न अबी तालिब की ज़रूरत होती है। आज भी अगर इसराइल को शिकस्त देनी है तो फिर अलम अली वालों के हाथ में होना चाहिए, तब तुम फातेह बनोगे, वरना 5 अरब मुल्क मिलकर शिकस्त नहीं दे सकेंगे। अकेले हिजबुल्ला के 10,000 जवान इसलिए शिकस्त देंगे कि इमाम उल मुत्तकीन के मानने वाले हैं। ये दिफाई जंगी तकवा क्या है? जंगी तकवा 2006 में जंगी तकवा क्या है? मैं एक जुमला करके आगे बोलूँ, जंगी तकवा क्या था 2006 में? इसराइल का एक बेड़ा था, बहरी जहाज़ था, उसको रॉकेट से बहरी जहाज तबाह किए, रॉकेट से। कैसे किया है? रॉकेट जो मारा है, जिस रॉकेट पहले रॉकेट ने जाकर उस बहरी जहाज में सुराख किया है और उसी सुराख में दूसरा रॉकेट घुस गया है जाकर, पहला रॉकेट फिर दूसरा रॉकेट उसी सुराख में घुस गया है, तब जाके वो बहरी जहाज तबाह हुआ है। और ये दुनिया के लिए हैरानकुन बात थी, आज तक किसी ने ये नहीं सुना था कि इतना जदीद बहरी जहाज रॉकेट से उसको तबाह किया जा सकता है। क्यों? जिस सुराख में पहले रॉकेट ने जो सुराख किया, दूसरा तीसरा रॉकेट उसी सुराख में गया है। तवज्जो है, कहाँ से सीखा हिजबुल्ला ने? ये महारत है, जंगी महारत है, और जंगी महारत भी अहले बैत के दामन से, अहले बैत के दरबार से ही सीखा जाता है। हिशाम बिन अब्दुल मलिक उमवी बादशाह, उमवी खलीफा हिशाम, उसको किसी ने, उसके जासूसों में से किसी ने कहा कि मदीने में इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हिजबुल्ला ने ये जो टेक्निक इस्तेमाल की है ये सीखी कहाँ से है, ये महारत उनके पास आई कहाँ से कि जहाँ रॉकेट मारे उसी जगह दूसरा रॉकेट जाके लग रहा है। हिशाम को पता चला मदीने में इमाम ने, बहुत से लोग इमाम के पास जमा हो गए हैं, तुम्हारी हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकता है। इसने इमाम को शाम बुलवाया, मदीने से बगदाद बुलवा लिया, शाम बुलवा लिया। इमाम बुज़ुर्ग थे उस वक़्त, छठे इमाम जवान थे, दोनों आइम्मा शाम आ गए। जिस दिन पहुंचे शाम में, तो हिशाम उस वक़्त तीरंदाजी की मशक कर रहा था, उसके साथ माहिर तीरंदाज थे और आगे एक निशाना रखा हुआ था और ये उस पर अपने तीरंदाजी की वो मशक कर रहे थे, अपनी अपनी महारत दिखा रहे थे। अब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत आलम इस्लाम में मारूफ थी, वो इल्मी एक शख्सियत, आलिम है, इमामुल फुकहा कहते हैं, जितने भी इस वक्त चारों फ़िक़े हैं अहले सुन्नत की, हमारी पांचवी फ़िक़े, हमारी ये पांचों फ़िक़े जो हैं ये सब कबूल करते हैं कि इनके जो इमाम हैं वो पांचों इमाम, सब कबूल करते हैं, क्योंकि इल्मी एक शख्सियत। तो हिशाम को भी पता था इस बात का, उसे ये पता था कि ये तो चूँकि दर्स और तदरीस में मशगूल रहते हैं, हदीसें सुनाते हैं, लोगों को इल्म सिखाते हैं, तो इनका क्या होगा तीर अंदाजी के साथ। तो उसने सोचा कि मैं किसी तरह ऐसा करूं कि नौज़ुबिल्लाह इमाम की तोहीन हो किसी तरह से। उसने कहा इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से कि हम ये तीरंदाजी की मशक कर रहे हैं, तो आप भी ज़रा एक आध तीर चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि बनी हाशिम का निशाना कैसा है। इमाम को अंदाज़ा था कि वो किस लिए ये बात कह रहे हैं। इमाम ने कहा मैं अब, मेरी उम्र नहीं है, मैं अब बुज़ुर्ग बूढ़ा हो गया हूँ, लिहाजा अब मैं तीरंदाजी और इस तरह की मशकें नहीं करता हूँ। इसने इसरार किया। जब इसने इसरार किया तो इमाम ने तीर और कमान उठाई। याद है ना कहाँ से हम चले? हिजबुल्ला ने इसराइल के बहरे जहाज में पहला रॉकेट जिससे सुराख किया था, दूसरा रॉकेट उसी सुराख के अंदर दाखिल हुआ है। इमाम ने तीर और कमान उठाई, काफ़ी दूर वो निशाना था जिसके बिल्कुल सेंटर में वो जगह होती है, पहला तीर जोड़ के इमाम ने मारा, जाकर बिल्कुल सुरख के दरमियान में ही लग गया, निशाना दरमियान में लगा। तो अब हिशाम और सब देख रहे हैं कि लग गया, तो क्या कहता है, एक आध निशाना तो कभी लग जाता है, ये ज़रा दूसरा तीर भी मारी है। अब पहला तीर वो निशाने पे लगा हुआ है, अब उसने फंसा हुआ है तीर। पांचवें इमाम ने दूसरा तीर जोड़ के मारा, दूसरा तीर पहले तीर के पीछे लगा है और उस तीर को चीरता हुआ निशाने के अंदर घुसा है। जब दूसरा तीर भी लगा एक दफ़ा सब हैरानगी के साथ आंखें एक दूसरे को इशारे करने लगे कि ये तो गलती से नहीं लगाई, ये तो इत्तफाक से नहीं लगा है, लगता है महारत है। ये आपस में चेमगोयाँ हो रही थी। पांचवे इमाम ने तीसरा तीर उठाया, उठाकर कमान में जोड़ के जब तीर फेंका तो दूसरे तीर को चीरता हुआ, निशाने के उस ढाल को चीरता हुआ पीछे एक दरख्त था उसे जाकर जब लगा है तो हिशाम कहता है यकीनन अली के बेटों का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। दुरूद पढ़ मोहम्मद वाले। अजान मतलब तकवा, जंगी तकवा कहाँ से लिया हिजबुल्ला ने? एक रॉकेट के सुराख में दूसरा रॉकेट घुसेगा। पांचवे इमाम ये रवायत, अब ये हासिल कैसे करेंगे? महारत प्रैक्टिस करनी होगी, मश्क करनी होगी, सीखना होगा, समझना होगा, अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, अपडेट करना होगा। अगर करेंगे तब जंगी तकवा हासिल होगा, और जब हासिल होगा तो फिर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनके सामने झुक जाएंगी, घुटने टेक देंगी। समझ आ रही है ना? अब आपको समझ आ जाएगी आसानी से कि यमन के नंगे पैरों लड़ने वाले अंसारुल्लाह दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को नाक रगड़ने पर मजबूर क्यों करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले साहिबान तकवा जंग करने वाले हैं। वो साहिबान तकवा, मुसल्ले का तकवा और मैदान जंग का तकवा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस कुरान मजीद में ख्वाहिश है कि आज अगर वक्त ने गुंजाइश दी तो मैं कुछ आयतें आपके सामने पढ़ दूं कि जिसमें कुरान ने कहा है कि ये काम करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ये काम करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ये करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। पहला काम जिसके लिए मैंने आयत भी पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए लोगो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले के लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्या होता है रमज़ान में? तब तवज्जो करें, रमज़ान में तकवा क्या है? रमज़ान हमें क्या क्या सिखा कर जा रहा होता है? मैं और आप ही हैं, हम ही हैं कि जो रमज़ान में इतने टाइम के पाबंद होते हैं, वक्त की पाबंदी में इतने हम माहिर हो जाते हैं, रमज़ान हमें इतना माहिर कर देता है कि हम रमज़ान में मिनट के हिसाब से अपना टाइम गिनते हैं। एक मिनट, अभी एक मिनट अफ्तारी में रहता है, एक मिनट रहता है। क्या रमज़ान के अलावा कभी भी हमने एक मिनट गिना? एक मिनट कभी गिना हो? एक मिनट सोचा भी नहीं होता एक मिनट गिनने का। लेकिन रमज़ान में खुदा मुझे और आपको अपने सिस्टम के अंदर डाल रहा है, कहते हैं मुत्तकी बनना है ना, तो मुत्तकी वक्त का पाबंद होता है। कितना पाबंद होता है? वो मिनट मिनट का ख्याल रख रहा होता है। अफ्तारी कर रहे हैं, एक मिनट पहले खा सकते हैं? एक मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं? अभी एक मिनट है, नहीं पी सकते। 10 सेकंड पहले? नहीं। 5 सेकंड पहले? अच्छा नहीं। यार हत्ता कितने हम उस वक्त माहिर हो जाते हैं वक्त की पाबंदी में कि एक मिनट की सबकत नहीं करेंगे। अफ्तारी के टाइम में अगर एक मिनट पड़ा है तो एक मिनट पूरा होगा तब जाके अफ्तार करेंगे। अच्छा सहरी में, सहरी के टाइम ख़त्म हो गया है, क्या मुमकिन है कि एक मिनट ऊपर खा लें? ख़त्म हो गया, पता चला टाइम ख़त्म, क्या ऊपर एक घूंट पानी पी सकते हैं? एक खुरमा, एक आध नवाला? नहीं, कोई भी नहीं खाता। जिसने भी रोज़ा रखना है उसे पता है अब नहीं खा सकता, एक मिनट नहीं खा सकता। बाज़ वक़्त ऐसा होता है, ये हकीकी वाक्य जो मैं बता रहा हूँ, एक देहात है पंजाब में, वहाँ पे वो ऐलान होता है हर वो सहरी का टाइम जब शुरू होता है फिर ऐलान होता है कि अभी घंटा रह गया, अभी आधा घंटा रह गया, अभी 20 मिनट रह गए, अभी 10 मिनट रह गए, वो एक एक करके 10-10 मिनट बाद ऐलान करते हैं। वो एंड पे जाके उसने ऐलान किया कि रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, वैसे तो सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है लेकिन मैं अपनी तरफ से 10 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी खा लो तो रोज़ा रख लो। 10 मिनट वो अपनी तरफ से दे रहा था कि खा के रोज़ा रख लो। तो ऐसा होता नहीं है, आपको पता है, सबको पता है कि अपनी तरफ से 10 मिनट नहीं दे सकते, एक मिनट। अब तवज्जो है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, तकवा वाला वक्त का पाबंद होता है, मिनट मिनट का ख्याल रख रहा होता है। अच्छा, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा वाला कैसा होता है? या अय्युहन नास तक्कू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। या अय्युहन नास उबुदू, बे उठो ए ईमान वालों, अल्लाह की बंदगी करो, इबादत करो। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया है, तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया है। अच्छा, बंदगी करेंगे तो क्या मिलेगा? लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी बन जाओगे। अच्छा, अब आए दोबारा रमज़ान में। रमज़ान में हम कितने माहिर मुखलिस, अल्लाह के कितने खालिस बंदे होते हैं, कितने खालिस बंदे। जिस बंदे ने रोज़ा रखा है, अब तो गर्मियों का महीना होता है, रोज़ा रखा है और दोपहर का वक्त है, चले 4-3 बजे का टाइम है, सारा दिन अगर बाहर भी गया है, पसीने आए हैं, काम किए, प्यास लगती है उरूज की, ऐसा ही है, 3 बजे का टाइम है, प्यास सख्त लगी हुई है, कुली करने के लिए वजू कर रहा है, कुली करने के लिए पानी मुंह में डाल रहा है, पानी मुंह में डाल रहा है, डालने के बाद पानी गिरा देता है, सख्त प्यास है, पानी मुंह में आने के बावजूद वापस फेंक रहा है और कोशिश करता है किसी भी तरह पानी का कोई कतरा अंदर ना चला जाए, खा खूब करके सारा पानी निकालता है। इतना खुदा का मुती है, इतनी इताअत अल्लाह की, इतना बंदा खुदा का, ऐसा बंदा, इतना गुलाम कि प्यास की शिद्दत है, पानी मुंह में आ चुका है, कुली के लिए पानी मुंह के अंदर है, उगल रहा है वापस। लअल्लकुम तत्तकून, ए ईमान वालो, रोज़ा इसलिए आता है कि तुम्हें मुत्तकी बना दे। इतना तकवा क्या है? अल्लाह की बंदगी, बंदगी से तकवा आता है। और रोज़े में इतना खालिस बंदा है, भूख लगे तब भी खाना नहीं खाता, सामने होगा नहीं खाएगा, बच्चा, बच्चों का रोज़ा नहीं होता ना, आपके सामने बच्चा बैठ के खाना खाएगा, लेकिन आप कभी भी एक चम्मच उसके पास से नहीं खाएंगे। ये है बंदगी, रोज़ा तकवा सिखाता है। एक और चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक बहुत बड़ी मुश्किल जिसके हम शिकार हो चुके हैं, खाना जो हम दिन में खाना खाते हैं, खाना दो वक्त का होता है, सुबह का और शाम का। दोपहर का जो खाना है उसका कोई तसव्वुर इंसानों में पहले नहीं होता था कि दोपहर को भी खाना खाया जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो था तो वो जैसे पत्थर तोड़ने वाले जो मज़दूर होते हैं, या किसान होता था जो बैल के साथ खेत खेत में काम करते थे, तो वो अपने साथ कुछ रोटी साथ लेकर जाते थे, जो चास के वक्त में जाके वो रोटी खाते थे, क्योंकि नाश्ता वो फजर की नमाज़ से पहले नाश्ता करते थे, और दिन चढ़े जाकर जब उन्हें भूख कुछ महसूस होती थी तो कुछ रोटी खा लिया करते थे। अब क्या होता है, अब हमने तीन वक्त का खाना तो वाजिबी किया हुआ है अपने लिए कि तीन टाइम का खाना तो है। पहले तो उर्दू में जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी, अभी भी मौजूद है वो इस्तिलाह, दो वक्त की रोटी, अभी भी मौजूद है। अगर दो वक्त की रोटी है, पुरानी इस्तिलाह है, दो वक्त की रोटी है, तीन वक्त की रोटी है ही नहीं, खाना दो टाइम का है। जिसकी रूटीन हो दो टाइम खाना खाने की, उसके रोज़े में और तीन टाइम खाना खाने वाले के रोज़े में फ़र्क होता है। देखे ना, सुबह खाना खाता है और शाम को खाता है, बाकी सारा दिन उसका मैदा उसको ज़रा सुकून मिलता है। अब उसके लिए क्या है, जब रोज़े का महीना आएगा, रमज़ान का महीना आएगा, तो उसके लिए थोड़ी सी टाइमिंग चेंज हो जाएगी, बाकी उसकी रूटीन वही है। सुबह का नाश्ता पहले फजर की नमाज़ के बाद करता था, अब उसको सुबह का नाश्ता फजर की नमाज़ से पहले करना है। रात का खाना मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़ पढ़ के थोड़ा देर से खाता था, अब उसको मगरिब के साथ ही रात का खाना खाना है। अगर खाने की रूटीन ये बन जाए, फिर मैं और आप रोज़े के बाकी चीज़ों से इस्तेफादा कर सकेंगे, फिर मैं और आप रमज़ान की बाकी फजीलतों से इस्तेफादा कर सकेंगे। हम जो कि सारा साल तीन टाइम पेट भर के खाना खाने के आदि लोग होते हैं, तो सहरी में ये समझ के खाते हैं कि सारा दिन भूखा रहना है, तो कोशिश करते हैं कि पक्की जितनी जगह रह जाए बाकी सारा हम भर लें। और इफ्तारी के टाइम पे बंदा ये सोच के खाता है कि सारा दिन तो भूखा रहा हूँ, अभी खाना खाना है, पक्की जितनी जगह मैंने तकल्लुफन कही है, वरना लोग रखते नहीं है। एक बंदे को डॉक्टर के पास लेके गए, और उसको कहा इसका पेट बहुत फूल गया है तो बड़ा तकलीफ़ में है। तो पूछा क्या हुआ था, कहा कहीं दावत पे था तो वहाँ खाना ज़्यादा खा लिया है। तो डॉक्टर साहब ने कोई दवाई बना के उसको दी, कहा ये जल्दी से खा लो। उसने कहा डॉक्टर साहब अगर इतनी जगह होती है तो एक नवाला और खा लेता, कहा जगह नहीं है इतनी अंदर। अगर मैं और आप खाने के मामले में ऐसे हैं फिर रमज़ान हमारा उसी कैफियत में ही गुजरता है कि वो देख रहे होते हैं कि भाई कितना टाइम रह गया है, हर कोई एक दूसरे से पूछते हैं अफ्तारी में कितना टाइम रह गया है। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हदीस है कि जब रोज़ादार अफ्तार करता है तो उसे दो खुशियां मिलती हैं, एक अफ्तार करने की और एक अल्लाह से मुलाकात करने की। एक अफ्तार करने की और एक तवज्जो है अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह से मुलाकात करता है। लेकिन नहीं, हम अफ्तार क्यों पूछते हैं, हमें दस्तरखान से मुलाकात करनी होती है, जाकर बंदा फिर सब कुछ अपने अंदर। तो बस रोज़ा आया किस लिए है? मुत्तकी बनाने के लिए। मुत्तकी क्या बना रहे हैं? 30 दिन मुझे और आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, खुदा भी खाना 2 टाइम है, और जो ईद का दिन आया तो 7 टाइम खाना खाता है, ईद वाले दिन तो 7 दफ़ा खाना खाता। और ये तो पाकिस्तान में राइज है, मीडिया पे भी आ जाता है, अगर बड़ी ईद आ जाए तो अस्पतालों में पहले 4-5-6 दिन 10 दिन तक पेट के मरीज़ आते हैं, और रोज़ा गुजर के ईद आ जाए तो उसमें भी पेट के मरीज़ आ जाते हैं। क्यों? तत्तकून हुआ ही नहीं ना, बस वो हमने 1 महीना जो है गुजारा और 1 महीने बाद हम आज़ाद हो गए। वह हमारे साथ तो एक और भी आज़ाद होता है, 30वां जब चांद रात होती है हम सब के साथ इबलीस भी आज़ाद हो जाता। अल्लाह ने कहा है लअल्लकुम तत्तकून कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़ा फ़र्ज किया है क्योंकि तुम मुत्तकी बन जाओ। आम दिनों में तुम बनते नहीं हो, ज़रा ढीले रहते हो। तो 1 महीना खुदा ने अपने कंट्रोल में रखा है, टाइम टेबल भी अल्लाह ने खुद दिया है, इख्तियार में नहीं रखा हमारे। अगर अल्लाह कहते चलो तुम्हारी मर्ज़ी जब तक खा सको तो फिर तो कहाँ रोज़ा रखना, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। हलाल काम भी हराम कर दिया, खाना पीना हलाल है ना, रोज़े में हराम है। बहुत सारी चीज़ें जो आम औकात में हलाल है रोज़े में हराम है। इतनी सख्त प्रैक्टिस 1 महीना करवा दी है, इतनी सख्त ट्रेनिंग 1 महीने बाद अल्लाह कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लेकिन 1 महीने बाद हम मुत्तकी बनते नहीं हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि रमज़ान हमने तकवा और मुत्तकी बनने के लिए नहीं गुजारा। बस आखिरी जुमला अगर इसका अर्ज़ कर दूँ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सहीफ़े सज्जादिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ है, इस्तक़बाल माह रमज़ान की दुआ, इस्तक़बाल माह रमज़ान की। आप में से जिसको अल्लाह तौफीक दे एक दफ़ा जाकर इमाम की उस दुआ को पढ़ें। एक तो होता है ना दुआ करने के लिए पढ़ते, नहीं, एक दफ़ा आप ये पढ़ें कि इमाम ने रमज़ान के लिए दुआ मांगी क्या है। उस दुआ के अंदर चौथे इमाम ने ये 30 दिन कैसे गुजारने हैं तफसील से सारा तरीका बताया हुआ है। बस मैं ये कहूँगा अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान के 30 दिन गुजरने के बाद जो अल्लाह ने कहा है ना लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी बन जाओ, अगर बनना चाहते हैं तो इस्तक़बाल माह रमज़ान में चौथे इमाम ने जो रमज़ान का टाइम टेबल दे दिया है उस दुआ के अंदर, उसको अगर फॉलो करें तो ईद उल फितर बन जाएगी। ईद उल फितर का मतलब क्या है? ईद कहते हैं वापस लौटने को, वापस आने को। फितर कहते हैं फितरत को। यानी ये 30 दिन अगर तरतीब से चौथे इमाम के दिए हुए बरनामे के मुताबिक गुजारें तो फिर ईद उल फितर हो जाती है। यानी ये इंसान रमज़ान से पहले कुछ और था, रमज़ान के बाद ये अपनी फितरत की तरफ लौटता है, तौहीद की तरफ लौटता है। यानी फितरत की तरफ लौटने से क्या मुराद है? ऐसा हो जाता है जैसे अभी दुनिया में आए, सारे गुनाह धुल चुके होते हैं, सारी गंदगियाँ कसाफतें धुल चुकी होती हैं और इंसान पाक साफ होकर अगली ज़िंदगी का आगाज़ करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस तकवा फ़कत इबादत नहीं बल्कि तकवा इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू में। आप कोई भी काम करें, आप तालिब इल्म हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप मुत्तकी हैं तो फिर स्टूडेंट मुत्तकी स्टूडेंट में और आम स्टूडेंट में फ़र्क होता है। आप किसी जगह जॉब करते हैं मुत्तकी इंसान जो जॉब करते हैं उसमें और गैर मुत्तकी में फ़र्क होता है। आप कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, कोई भी काम, आप किसी मुल्क के सरबराह हैं, मुत्तकी हैं तो आपका अंदाज कुछ और है, और मुत्तकी नहीं है तो आपका अंदाज कुछ और है। हर चीज़ में तकवा, हर चीज़ में काबिल अमल है, हर जगह काबिल अमल, हर जगह इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू में, हत्ता हमारे ख्वाबों में भी तकवा काबिल अमल है। अगर हम मुत्तकी हैं तो आपके ख्वाबों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ख्वाबों पे आपकी दस्तरस और आपकी गिरफ्त है या नहीं है, क्योंकि मुत्तकी इंसान के ख्वाब और गैर मुत्तकी इंसान के ख्वाबों में फ़र्क होता है। दूर पड़े मोहम्मद वाले, बस ऐसा नहीं होता। तकवा इंसान को कंट्रोल देता है, इंसान पूरे जज्बात के अंदर भी अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। मुत्तकी है इमाम अली के मानने वालों में, मालिक अश्तर मुत्तकी है, अली इमाम अल मुत्तकीन है, मालिक अश्तर उसी इमाम अल मुत्तकीन, इमाम का मानने वाला मुत्तकी सिपाही है, साहिब तकवा सिपाही है मालिक अश्तर। क्या हुआ सिफेन में, जब कुरान नेज़ों पर बुलंद हुए तो अक्सर लोग वापस आ गए और आकर मौला अली के खेमे का घेराव कर लिए, जबकि मालिक अश्तर और उसका लश्कर के उसके ख़ास सिपाही जो इस धोखे में नहीं आए वो लोग आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि कहाँ पहुँच गया है, सामने अमीर शाम का खेमा है और मालिक अश्तर के हाथ में तलवार है, सिपाही भी साथ हैं, पहुँच गए और मालिक अश्तर उतरे और ललकारा अमीर शाम से कहा कि आ जाओ मुकाबले के, खुद अभी आया नहीं, अपने ग़ुलाम को भेजा, अमीर शाम ने ग़ुलाम को भेजा मालिक के मुकाबले में। एक वार के बाद ग़ुलाम का सर तन से जुदा हो गया, अब मालिक तैयार है कि आगे बढ़ें, चंद कदम के फासले पर सिफीन का नतीजा है, चंद कदम मालिक अश्तर के घोड़े के चंद कदम हैं, उसके बाद सिफीन का नतीजा अली के हाथ में, अली के हक में है। मालिक अश्तर तैयार हुए आगे बढ़ने के लिए, किसी ने आकर कहा मालिक, मौला ने कहा है वापस आ जाओ, मौला ने कहा है वापस आ जाओ, तो जो है कहाँ खड़ा है, चंद कदम है, जंग मालिक के हाथ में है, कहा मालिक, मौला अली ने कहा वापस आ जाओ, मालिक ने तलवार नयाम में डाली और वापस आए। क्यों? मुत्तकी सिर्फ जज्बाती साथी नहीं है अली का, ऐसा नहीं है कि जज्बात में अली के साथ, हाँ तकवा है, जंगी तकवा मौजूद है, उसे खबर है, मालिक को पता है कि जंग में अमीर की इताअत कितनी ज़रूरी होती है, खबर है, जो ही कहना मौला ने कहा वापस आ जाओ, तलवार नया में डाली और वापस आ गया, कोई बीच में दलील पेश नहीं की कि मौला से कहें कि अभी रुके मैं तो ख़त्म करने वाला हूँ जंग, हाँ वापस आ गया। बस ऐसा नहीं होता, अगर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं मैं और आप, मुत्तकी बनकर गुजारें, और ये बार बार तकरार कर रहा हूँ, मुत्तकी यानी परहेजगार नहीं, बचने वाला, खुद को बचाने वाला, खुद को महफूज रखने वाला, ज़िंदगी के हर शोबे में, हर मरहले में, हर काम में, बस अगर कर लिया मुत्तकी बन गए तो फिर कुरान ने कहा है यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिह, कुल्लु उनासिन बिइमामिह, हम बरोज़ क़यामत लोगों को उनके इमाम के साथ पुकारेंगे, यानी जिस इमाम की वो पैरवी करते रहे हैं बरोज़ क़यामत कहा जाएगा, हर कोई अपने इमाम के साथ रोज़ महशर आकर खड़ा हो जाए, तो जो जो मुत्तकी था दुनिया में वो इमाम उल मुत्तकीन के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। बस अगर चाहते हैं कि बरोज़ महशर ये सआदत हासिल हो तो तकवा, और आखिरी जुमला अर्ज़ करूँ, तकवा फ़कत आखिरत में कोई उसका फ़ायदा होने वाला है, तकवा का नतीजा आखिरत में मिलेगा ना, तकवा का ज़्यादातर नतीजा इसी दुनिया के अंदर आप देख लेंगे, आखिरत तो है ही, आखिरत तो है ही मुत्तकीन के लिए, जन्नत वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत तो है ही मुत्तकीन के लिए, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत का घर तो है ही मुत्तकीन के लिए, आखिरत का ठिकाना तो है ही मुत्तकीन के लिए, लेकिन खुदा का वादा क्या है, इजअल लहु मखरजा, दुनिया भी मुत्तकी के लिए, दुनिया की सहूलत भी मुत्तकी के लिए है, दुनिया की कामयाबी भी मुत्तकी के लिए है, हिजबुल्लाह के लिए दुनिया की कामयाबी भी है आखिरत के साथ साथ, अंसारुल्लाह के लिए दुनिया की कामयाबी भी है, रहबर मुअज़्ज़म दुनिया की कामयाबी भी समेट रहे हैं। तो इंशाल्लाह तवज्जो इस पर रहेगी, फ़कत परहेज़गारी या फ़कत इबादत और मुसल्ले का तकवा, ये कंप्लीट और मुकम्मल तकवा नहीं है। मुकम्मल तकवा इंसान को मुत्तकी कब कहा जाए, कहा जाए ये मुत्तकी इंसान है, पूरा इंसान मुत्तकी है कब, जब उसकी ज़िंदगी के हर पहलू में तकवा नज़र आए। और तकवा का मतलब क्या है, बचना, ख़ुद को महफूज रखना। और बकौल रहबर मुअज़्ज़म मुत्तकी इंसान जब भी किसी काम के में दाखिल होता है, जब भी किसी काम में दाखिल होता है, मुत्तकी इंसान जब भी कोई काम अंजाम देता है तो वो ख़ुद को, लोगों को और माशरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना वो किसी को भी नुकसान नहीं होने देता। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान मोहतरम, चंद एक जुमले करबला के शहदा की तदफीन के बारे में अर्ज़ कर दूँ। 10 मुहर्रम को मेरा मौला करबला में शहीद हुआ है। आज इस्लाम को आए हुए 1400 साल गुजर गए हैं, 1400 साल, उस वक़्त अभी 50 साल गुजरे थे, लेकिन आज भी हम देखते हैं किसी भी जगह कोई फौतगी हो जाती है, कोई लोग, कोई इंसान गुज़र जाता है, सब लोग कहते हैं कि इसको दफन करने में जल्दी करो, तदफीन जल्दी होनी चाहिए, तदफीन में देर मत लगाओ। अगर किसी रिश्तेदार ने बहुत दूर से आना हो तो उनसे माफ़ी मांगी जाती है, उनसे माजरत की जाती है, उनसे कहा जाता है कि हम जनाजे को ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते, हमें दफनाना होगा, हम ज़्यादा देर जनाजे को नहीं रख सकते। 1400 साल गुजरने के बाद इस्लाम के उस हुक्म की इतनी तामील कि कोई भी जनाजा हो तो उसको दफनाने में जल्दी करते हैं। जुमला अर्ज़ करूँ, बनू असद के मर्द, ख्वातीन और बच्चे शहदाए करबला को दफनाने के लिए आए, 13 मुहर्रम को आए हैं। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, 13 मुहर्रम को बनू असद आए हैं करबला में, आशूर को 3रा दिन है, 3 दिन तक जहरा के लाल का बेगोर व कफन जनाजा करबला के उस तपती रेत पर, उस धूप में, उस खुले आसमान तले 3 दिन वो जनाजा पड़ा रहा है। अजरकुम अल्लाह, बनो असद आए क्योंकि उन्होंने कहा, वादा किया था कि मौला हम आपका साथ जंग में नहीं दे सकते, कहा फिर हमें दफनाने के लिए आ जाना, मर्दों से भी कहा था कि तुम आ जाना दफनाने के लिए, फिर औरतों से कहा था अगर तुम्हारे मर्द ना आए, घबरा जाए तो तुम आकर हमें दफन कर देना, फिर औरतों के बाद बच्चों से भी, मौला ने हुज्जत तमाम की है, बच्चों से कहे बच्चों हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप डर जाए, मजबूरी की वजह से ना आए, तो तुम लोग यूँ करना, खेल खेल के बहाने, दौड़ने भागने के खेल करते हुए भाग भाग के करबला आ जाना, और अपने हाथों से, छोटे छोटे हाथों में मट्टी उठा उठा कर बस हमारे जनाजों के ऊपर डाल देना, हमारी तदफीन हो जाए। आ गए बनो असद, सब आए, मर्द भी आए हैं, खवातीन भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं। करबला आने के बाद जो मंजर देखा है, बनू असद के बूढ़े जवान आपस में कहने लगे कि तदफीन कैसे करें, कब्र तो बना लेंगे, दफन भी कर देंगे, कब्र के ऊपर नाम किसका लिखें, यहाँ तो कोई भी जनाजा पहचाना नहीं जा रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा जनाजा किसका है, क्योंकि किसी भी जनाजे पर सर बाकी नहीं है, बेसर लाशों से कैसे तदफीन करेंगे। आपस में यही बातें कर रहे थे, देखा तो कूफा की तरफ से एक सवार आता हुआ दिखाई दिया कि जिसका जिस्म लागर है, मरीज जैसी जिस्म के साथ, कमजोर और नहीब जिस्म के साथ एक सवार आ रहा है। मुतवज्जे हुए तो देखा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, आ
आकर उतरे और कहा, ए बनू असद घबराओ मत, वारिस आ गया है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सा जनाजा किसका है। अजादार जो तदफीन का मंजर मक्तल मुकर्रम में लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ। कहते हैं, अब हालत क्या थी, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एक जगह खड़े थे, बनू असद एक एक जनाजा उठाकर इमाम के सामने ले आते थे, फिर इमाम बताते थे ये फलां का जनाजा है, फिर वो ले जाकर दफन करते थे। जब इमाम बताते थे ना ये फलां का जनाजा है, तो कहते हैं बनी असद की औरतें सर पर और मुंह पर मातम करना शुरू करती थी, रोना और गिरिया करना शुरू करती थी। एक दफा बनू असद की औरतों के गिरिये में इजाफा हुआ, चीखें और आवाजें बुलंद भी ज्यादा, क्योंकि अब जब जनाजा सामने लाकर रखा तो सज्जाद एक दफा जनाजे के पास बैठकर कहा, ये उसका जनाजा है कि जब ये शहीद हुआ तो मेरे बाबा ने कहा था, अकबर तेरे जाने ने मुझे मेरी आंखों की बिनाई छीन लिए। अजरकुम अल्लाह, एक एक जनाजा उठाकर तदफीन, सब जनाजों में बनी असद ने साथ दिया और तदफीन कर दी, सारे जनाजे दफन हो गए। अब सज्जाद अपनी जगह से उठे, उठकर हुसैन के मक्तल के पास आए, हुसैन इब्न अली के जनाजे के पास आकर अब जनाजे की तदफीन के लिए सज्जाद खुद आगे बढ़े। बनू असद ने कहा, आकर मौला हम साथ देते हैं, आपके बाबा का जनाजा है। मौला सज्जाद ने कहा, नहीं बनू असद, तुमने बाकी सब जनाजों में साथ दिया है, बाबा के जनाजे में तुम्हारा साथ देने की जरूरत नहीं है। कहा, मौला बाप का जनाजा क्या अकेले दफन करेंगे? इमाम सज्जाद ने कहा, नहीं अकेला नहीं हूं, यहाँ कुछ लोग मेरी मदद करने के लिए आ गए हैं। एक तरफ मेरे दादा अली आए हुए हैं, मेरा नाना रसूल खुदा आए हुए हैं, यहाँ पास ही मेरी दादी जहरा बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि कब हुसैन का जनाजा दफन करूं। अजादारो सज्जाद ने मौला हुसैन के जनाजे के नीचे हाथ रखे और कहा, बिस्मिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अजादारो हुसैन का जनाजा कब्र में रखने के बाद एक दफा 22 साल के जवान बेटे ने हुसैन की कटी हुई गर्दन पर अपना चेहरा रख कर कहा, तो या अबता तू वल अर्ज, ए मेरे बाबा कितनी खुशकिस्मत है ये जमीन कि जिसने आपको अपनी आगोश में लिया है। अजादारो सज्जाद कहते हैं, बाबा आपके जाने के बाद अब सज्जाद कभी भी रात को सो नहीं पाएगा। बस आखिरी जुमला अर्ज करो, अजादारो दफन कर दिया मौला हुसैन को। उसके बाद कब्र बनाने के बाद सज्जाद ने अपनी उंगली से उस गीली मिट्टी के ऊपर एक जुमला लिखा, कहा, हाज़ा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़त्ल अदशाना, कहा ये हुसैन की कब्र है कि जिन्हें प्यासा ज़िमा कर दिया गया था। तदफीन कर दी। उसके बाद सज्जाद उठे और नहरे अलकमा की तरफ जाने लगे। बनू असद ने कहा, मौला सब जनाजे तो दफन हो चुके हैं, आप नहर की तरफ जा रहे हैं। कहा, नहीं बनू असद, अभी एक जनाजा रहता है कि जो नहर के किनारे पड़ा हुआ है। कहा, मौला नहर के किनारे कौन है, वहां कौन सा जनाजा रह गया? मौला हुसैन सारे जनाजे तो मकदर में लेकर आए थे। कहा, नहर के किनारे उसका जनाजा अभी भी बाकी है जो पानी न लाने की शर्मंदगी की वजह से खेमों में वापस नहीं आया। अजादारो गाजी के जनाजे पर पहुंचने के बाद सज्जाद ने खुद को जनाजे पर गिराया और कहा, चाचा बस आपके जाने के बाद जो सज्जाद ने देखा, चाचा मैंने फूफियों को बेरिदा कूफा के बाजार और इब्ने ज़ियाद के सामने देखा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम अज़-ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमा कलाम यनकलबून।